ये कलाम जो हम सुनेंगे, ये कलाम हमारे प्यारे मुर्शिदार बिरला हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत हसीन कलाम है, और इंशाअल्लाह इसकी तशरीह भी की जाएगी। نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نعمت والا فرماتے ہیں کہ یعنی جب گندے تقاضے تو اٹھتے ہیں، ان سے انبن کرنی ہے، یعنی ان سے دشمنی رکھنی ہے، ان کے خلاف جانا ہے، نفس کے گندے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ بھائی موبائل دیکھو یا گناہ کے کام کرو، حرام کاریاں کرو، اس میں مزہ آئے گا، لیکن اس کے خلاف جانا، نفس کی نہیں ماننا، تو یہ کہلاتا انبن۔ نفس کے گندے تقاضوں سے جب سے انبن ہو گئی کہ میں نے اس کی ماننا چھوڑ دی، تو روح میری ریحان اور سنبل ہو گئی۔ ریحان اور سنبل خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو میری روح جو ہے وہ میری ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے میرے اوپر کہ مجھے اپنی روح کے اندر خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ گندے تقاضے یہ بدبو پری ناپاک نجس کی ہوتی ہے، اور اس پہ عمل کر لو تو اور زیادہ گند پری تھی۔ تو جب آدمی اسے خلاف گئے تو اللہ پاک خوشبوؤں میں نہلا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے غالباً خلیفہ تھے حضرت رسول اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ، یا شاہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ بارہ، تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب میں ذکر اللہ کرتا ہوں تو حقیقت میں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ بتائیے، بسفا نہیں تھا، خیال نہیں تھا، انہوں نے خدا کی قسم اٹھائی۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قسم آپ نہ بھی اٹھاتے تو مجھے یقین تھا، اللہ کا نام جب آدمی درد دل سے لیتا ہے گناہوں سے بچنے کے بعد، جب تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر اس کا لذت اور اس کا مزہ بھی کچھ اور ہی، پھر اللہ کے نام کا آتا ہے، بالکل آپ کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے منہ میں مٹھائیاں کسی نے ڈال دی۔ اور بعض دفعہ آدمی کو حقیقت میں خوشبو بھی آتی ہے، جیسے درود پاک کی جب لوگ کثرت کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا کچھ کرامتیں دیتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کون سا عطر لگا ہے، بہت ہی حسین، ایسی ہم نے خوشبو نہیں سنی۔ بڑے بڑے عطر فروش جن کی پوری زندگی ریاض میں گزری ہے، وہ بھی کہتے ہیں ایسی خوشبو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ تو پھر پتہ چلتا ہے درود پاک کی کثرت کی وجہ سے وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو مراد یہ ہے گندے تقاضوں پہ عمل نہیں کرنا، غلط چیز ہے، بس تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اس کا رزلٹ بہت شاندار آتا ہے۔ اب اس کا رزلٹ پہ بات کیا ہے تو پھر بیان کہیں سے بھی نکل جائے گا، بس مزے ہی مزے ہیں بندے کے۔ جب ہمارے دل میں آب و گل شامل ہوا، درد دل شامل ہوا، جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، آپ کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے مٹی اور پانی میں جب اللہ کی محبت کا درد در جب حاصل ہوا، ہمیں ہمارے جسم کی مٹی میں اللہ کی محبت کا درد در حاصل ہوا، تو پھر ہمارے معاملات ہی کچھ اور ہو گئے۔ تو اس کو مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ درد دل کب شامل ہوگا، جب آدمی گندے تقاضوں سے جب بچنے کی کوشش کرتا ہے، خیالات آتے ہیں لیکن اس کو ہٹا کے کسی اور سمت میں لگانا ہے، آدمی مصروف ہو جائے، کسی کام میں لگ جائے، یہ نہیں کہ ان تقاضوں پر عمل شروع کر دے۔ گندے خیالات تو اللہ والوں کو بھی آتے ہیں، کوئی شاعری کو بچاؤ تو بہت آگے ایک معاملہ ایسا آتا ہے کہ جب آدمی بہت ہی اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے، پھر وساوس سے بھی حفاظت اللہ پاک کر دے۔ تو وسوسے سے ایک عام مسلمانوں کو بھی آتے ہیں، گناہگار مسلمانوں کو بھی آتے ہیں، اللہ والوں کو بھی آتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں اور وہ عام مسلمان گناہگار ہیں، کہ عام مسلمان گندے تقاضوں پر عمل کر لیتے ہیں، اللہ والے ان کو کچل دیتے ہیں۔ بس تقاضے سب کو آتے ہیں، وہ جس نے کچل دیا وہ اللہ کا ولی، جس نے نہیں کچلا عمل کر لیا وہ عاشق مسلمان۔ اس کی تشریح میں حضرت تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک بہت سے نماز روزہ جو گناہگار فاسق فاجر مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ بھی نماز روزہ قرآن ذکر اذکار ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نماز روزہ قرآن ذکر اذکار سارے ظاہری اعمال کرتے، تو ان دونوں کے درمیان واضح فرق کیا، جس کی وجہ سے وہ عام مسلمان ہیں
और वो जो है गुनाहगार है और वो दूसरे जो है वो अल्लाह के वली कहलाते हैं, जबकि जाहिरी बात है दोनों की बराबर है। बाज जो गुनाहगार लोग होते हैं, हो सकता है वो अल्लाह का वली हो और किसी मजबूरी की वजह से या नफरी चीजों की तरफ उतना ध्यान ना हो उनका, और हो सकता है वो गुनाहगार मुसलमान वो नफरी चीजें बहुत पढ़ो, चाहे सवाबीन वगैरह भी पढ़ो, तो फिर तुमको आगे होना चाहिए। लेकिन नहीं, असल तीन चीजें होती है इबादत की, फराइज वाजिबात सुन्नत मौकदा। हजरत पाला रहमत इरशाद फरमाते थे वो तीन काम कर लो, फराइज वाजिबात सुन्नत मौकदा, और गुनाहों से बच जाओ वलीउल्लाह बन के मरोगे इंशाअल्लाह। बजाय आदमी फराइज वाजिबात सुन्नत मौकदा भी पढ़ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा नफली इबादत कर रहा है, तहज्जुद में भी उठ रहा है, वबीन वगैरह भी पढ़ रहा है, चार्ज भी पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, माशाल्लाह सब कुछ कर रहा है, लेकिन गुनाह नहीं कर रहा, हराम काम गुना को नहीं छोड़ा, हराम कामों से बाज नहीं आ रहा, मोबाइल देखता रहता है, गंदी चीजें देखता रहता है, सारी इबादत भी सारी चल रही, वो इसलिए उधर कुएं का मेंढक ही रहेगा, वो बकसरत इबादत की वजह से। तो बकसरत इबादत जो है मुबारक तो है, लेकिन भाई गुना से भी जो बचना, तो दोनों के दरमियान फर्क क्या है? बात हो रही थी कि काम गुनाहगार मुसलमान भी वही जाहिर इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के वली भी वही इबादत करते हैं, मस्जिदों भी साथ नजर आते हैं, कुरान जिक्र अफकार में भी साथ बाद पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो जो मुब्तदी होता है वो भी, और मुब्तदी और मुंतही बाब दफा दोनों एक जैसे नजर आते हैं, सबके दाढ़ी टोपियां होती हैं, सबका एक जैसा हुलिया होता है, सही ना, सबके मामला बगैर एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन मुब्तदी कहते हैं जो इब्तदा करता है, और मुंतही जो इंतहा तक पहुंचा हुआ होता है, बगैर मुब्तदी और मुंतही दोनों एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है? बगैर इबादत के बावजूद कि अल्लाह के वली जो होते हैं, कि ऐसी चीज दोनों के दरमियान है कि वो अल्लाह के वली और फासिक फाजिल गुनाहगार मुसलमान कहलाता है, वो दोनों के दरमियान जो डिफरेंशिएट जो चीज कर रही है, जो बाइफरकेट कर रही है, जो फर्क है, वो एक ऐसी इबादत है जो फासिक फाजिल गुनाहगार मुसलमान को हासिल नहीं है वो इबादत, और अगर वो कर ले तो वो भी अल्लाह का वली बन जाएगा। वो क्या चीज है जो गुनाहगार मुसलमान को हासिल नहीं है? बकसरत इबादत होते वो है खूने आरजू करना, गुनाहों से बचने का गम उठाना, अपने दिल को तोड़ लेना, लेकिन अल्लाह के कानून का टूटने देना, बस ये वो इबादत है, ये वो मुजाहदा है जो वो फासिक फाजिर मुसलमान को हासिल नहीं, अल्लाह के वली कर रहे हैं नेक अमाल के साथ। ये फर्क होता है। एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कुछ जाहिर इबादत नमाज रोज से मुतालिक कोई बातचीत करी, फिर उसके बाद उसने साहब ने जो है कुछ तकवे से मुतालिक बात पूछी गुनाहों से छोड़ने के ऊपर, तो आप इरशाद फरमाए तुम जाहिरी इबादत को तकवे के बराबर मत करार दो, क्योंकि तकवा बहुत ऊंची चीज है, तकवा बहुत बड़ी चीज है, तुम दोनों को बराबर मत करो। तो ये कौन तकसीम कर रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक तो भाई कि हम नेक अमल कर रहे हैं, रमजान रमजान आ रहे हैं माशाल्लाह भी, अब रमजान में माशाल्लाह बकसरत इबादत भी होती है, सब कुछ है, लेकिन वही बात घूम फिर के आती है कि लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह फरमा रहे हैं रमजान इसलिए मैं भेज रहा हूँ ताकि ताकि तुमको तकवा नसीब हो जाए। अल्लामा इकबाल ने भी तो यही कहा था ना, फरमाया था उन्होंने कि इबादत के वास्ते कम नाते करो बयां नहीं फरिश्ते, इबादत के लिए कम नाते करो बयां, दर्दे दिल के, पहला शेर था इसका, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम नाते करो बयां, अल्लाह की मोहब्बत ऐसी आ जाए, ऐसा दर्द दिल जो है तैयार हमारे कुलूब में हो जाए, अल्लाह ने इसलिए हमें पैदा किया है, खाली इबादत के लिए पैदा नहीं किया। तो यहाँ पर बहुत प्यारा यानी एक बात फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इबादत के लिए फरिश्ते काफी थे, अल्लाह ने अगर हमें सिर्फ इबादत करवानी होती थी तो फरिश्ते क्या कम नहीं थे, क्या कम थे इबादत के लिए, दर्द दिल के लिए वास्ते पैदा किया, ऐसा दर्द दिल वही बात किसे कहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत में रोना गिड़गिड़ाना, गुनाहों से बचना, दिल तोड़ना, हराम और जो खून करना, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ने नफ्स लगाया, फरिश्तों के साथ नफ्स नहीं है, इसलिए हम अशफुल मखलूकात फरिश्तों से आगे चले गए। वजह क्या है कि फरिश्तों में कोई तकाजा नहीं होता गुनाह का, उनके अंदर सेक्स नहीं है, उनके अंदर शहवत नहीं है फरिश्तों के अंदर, तो उन्होंने नफ्स को मारा क्या उन्होंने नफ्स को कुचला ना, वो बीमार होते हैं फरिश्ते, ना उनको नौकरी करनी है, ना उन्हें कारोबार करना है, ना उनको टेंशन होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना उनको बीपी हाई होता है, ना उनको शुगर होती है, ना बीमारियां लगती है, ना उन पर मसाइब आते हैं, ना उन पर तकलीफें आती हैं, बस वो तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, नूरानी मखलूक है, अल्लाह ने जिसकी जो ड्यूटी लगा दी वो कर रहा है। तो वजह क्या है कि हम इंसान हजरत इंसान फरिश्तों से भी ईमान वाले लोग आगे क्यों बढ़ गए, कि अल्लाह ने हमें एक मुशक्कत में डाल दिया, मुशक्कत ने पैदा किया, और अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया हमने इंसान को मुशक्कत ने पैदा किया, यानी किसी ना किसी कबू गांव में किसी ना किसी कोशिश में किसी ना किसी फिक्र में लगा रहता है, यहाँ तक कि उसकी मौत वाकई हो जाती है। क्यों भाई, नमाज हम पढ़ते हैं, कुरान जिक्र अस्कार नमाज रोजा सारे मामला करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुनाह से भी बच रहे हैं, आराम ख्वाहिशात से भी बच रहे हैं, फिर बाद जब अल्लाह ने मेरे को बीमारी हो जाती है छोटी मोटी जो भी है फिर उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि बीमारी छोड़ दी, अल्लाह मियां आप कौन और हम कौन, आपने बीमारी भेजी मैं तो आपकी इबादत कर रहा था, नहीं, जो भी तकलीफ है अल्लाह को नहीं छोड़ना है, कुरान भी पढ़ना है, उसी तरह से कोई परेशानी आ गई कोई तकलीफ आ गई खुदा से रुजू होते हैं, तौबा उसका पार करते हैं, गुनाह की अल्लाह हमारी परेशानी दूर कर दे, रुजू अल्लाह रहते हैं, कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कभी किसी की बीवी बीमार हो जाती है, लेकिन अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं। जो जो गुजरना थी गुजर गई दिल पर मगर, जो गुजरना थी गुजर गई दिल पर मगर, तेरी मर्जी के जो बंदे थे लब हिला ना सके, तेरी मर्जी के जो बंदे थे वो लब हिला ना सके, तो गुजरना थी गुजर गई दिल पर। तो अल्लाह के आशिकीन जो होते हैं कि वो गमे हसरत उठाते रहते हैं, सारे मसले मसाइल से भी निमटते रहते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह से मोहब्बत नहीं छोड़ते, अल्लाह से इश्क नहीं छोड़ते, यहाँ तक के उनकी मौत वाकई हो जाती। ये कहलाता है कि इस बंदे को दर्द दिल हासिल है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, वो फरिश्तों में ये चीज नहीं है। तो अल्लाह यही देखना चाह रहे थे, देखो कि मैं अपने आशिकीन कुछ ऐसा पैदा करूँ, फिर इनकी आजमाइशें भी करूँ, तो बस यहाँ तक के फिर आखिर में बाज़ लोग जान भी दे देते हैं खुदा के ऊपर, ये आशिकीन का ऊंचा मुकाम होता है। इसलिए हजरत इंसान जो है वो फरिश्तों से आगे बढ़ गया, फरिश्तों से आगे बढ़ गया, तो ये मामूली बात नहीं है।
किस कदर जुल्मत का गाथी अंजुमन के बवर, किस कदर जुल्मत का गाथी अंजुमन के बवर, उनके आते ही सारा पाप रोशन हो गई, रूह मेरी सुनो
इस कदर जुल्मत कदर थी अंजुमन उनके बगैर, यानी अल्लाह के बगैर, जब अल्लाह से ताल्लुक नहीं था, वो लोग जो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, हराम कारियों में नमाजें छोड़ रहे हैं, कुरान जिक्र अस्कार को छोड़ा हुआ है, या गुनाहों की हराम कारियों में लगे हुए, इसी तरह से वो अपने दिल को खुश करते रहते हैं लेकिन अल्लाह को नाराज करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि मरना भी है, खुदा के पास जाना भी है, तो अल्लाह के बगैर जी रहे हैं, अल्लाह को भुला के जी रहे हैं, आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कुछ नहीं जानते हमारा पालने वाला कौन है क्या है, बस इस तरफ सोचने का उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन होता है क्या, जब कोई अल्लाह वाला मिल जाता है, कोई ताल्लुक कायम हो जाता है, फिर उनकी सोबत से अल्लाह वालों की दुआओं तवज्जोहात और सोबत से जब अल्लाह फजल फरमाते हैं और इश्क़ इलाही हासिल हो जाता है, तक़वा हासिल हो जाता है, और आदमी नेक अमाल के साथ गुनाहों से बचने लगता है, फिर अल्लाह का क़ुर्ब खास पाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब उसको हासिल हो जाता है, फिर उसकी रूह ऐसी हो जाती है बाग़ आशिकीन की कि वो चलते तो ज़मीन पर हैं लेकिन रूह उनकी बाज़ दफ़ा ऐसा उनको महसूस होता है कि चल हम ज़मीन के ऊपर रहें लेकिन हमारी रूह जो है वो अर्श आज़म का तवाफ़ कर रही है। अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है, जिसके ऊपर मुहर का शेर भी था, दुनिया के साथ रह के भी ये बाखुदा रहे, दुनिया के साथ रह के भी ये बाखुदा रहे, सबके साथ रह के भी मगर सबसे जुदा रहे, तो ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। दुनिया को छोड़ते नहीं अल्लाह वाले, सारे मामला करेंगे, हुकूर अल्लाह भी हुकूर इबाद भी, लेकिन उनका जीने का अंदाज मुनफरिद होगा। दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, ये अल्लाह वालों की शान होती है। इस कदर जुल्मत ऐसे लोगों की जिंदगी, चाहे लखपति हो करोड़पति हो चाहे अरबपति क्यों ना हो, उनकी जिंदगी बाग गुनाहों की वजह से जहन्नम कदर बनी हुई हो। हजरत वाला फरमाते थे अस्बाब होना और है, राहत अस्बाब होना और है, और असल राहत होना और है। फरमाया कि एसी जो होगा गर्मी में तुम्हारी खाल को ठंडी कर देगा, गर्मी बहुत है एसी चलाओगे, लेकिन जो पल पे तुम्हारे दिल में जो आग लगी हुई होगी गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाराजगी की वजह से, वो आग तुम्हारी एसी ठंडी नहीं कर सकती, अंदर की आपको खाल ठंडी हो जाएगी और तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, जिस्म ठंडा हो जाएगा, लेकिन दिल ठंडा नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा, तुम खुद पाओगे कि ऐसी की तैसी। अजीब, अगर बार दफा वो काफिये से काफिये मिलाते थे तो ये फरमाया, मिसाल देके और फरमाया कि मुंह में कबाब होगा, यानी क्या होगा, दुनिया भी कितने ऐश भी अगर होंगे, खूब माल दौलत भी हासिल होगा, लेकिन क्या फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल्लाह कि मुंह में कबाब होगा लेकिन दिल में अजाब होगा, दिल में अजाब होगा। तो अल्लाह की नाफरमानी के साथ जीना ये बड़ा खतरनाक है। मरने के बाद जो जहन्नम मिलती है वो तो किसी को मिलती है, अल्लाह हम सबकी मुसलमानों की पावर फरमाए, लेकिन जीते जी इंसान अपने वजूद के अंदर हजरत वाला फरमाते थे उसकी छोटी सी ब्रांच जहन्नम की अल्लाह उसके दिल में उसके जिस्म के अंदर डाल देते हैं, हर वक्त उसकी खोपड़ी और दिल में आग लगी रहेगी, दहशत की, नाउमीदी की, मायूसी की, गम की, परेशानियों की, जबकि राहत अफबाब सारे मौजूद होंगे, कोई गम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन क्या ऐसा होगा जैसे जिंदा लाश, मजा नहीं आएगा जीने का उसको, दुनाओं से दिल बहलाते रहते हैं ऐसे लोग, ये सोचते कि शायद दिल बहलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो भाई ये तो और ज्यादा गंद वाली बात हो गई, गुना दर गुना से तो और अजाब पड़ेंगे और परेशानियां पड़ेंगी। वक्ती तौर पे एक गुना की खासियत होगी, मजा आता है जब तक आदमी गुना करता है, लुत्फ आता है, उससे इनकार नहीं, क्योंकि आजमाइश के वास्ते अल्लाह ने गुना में कशिश डालेगी, लेकिन उसका जो रिएक्शन हो, और गुना में थोड़ी दीसी देर का मजा होता है गुना का, लेकिन उसका महीनों सालों घंटों पत्नी कितने दिन लग जाते हैं उस अजाब को झेलते झेलते कि उस जो थोड़ा सा मजा हासिल किया था। तो कभी गुनाह से बचे आदमी, कभी हो जाए इंसान है तो खता है इंसान, तो फौरन तौबा कर ले, तौबा में देर ना करे। तो जब अल्लाह वाले की सोच मिलती है और आदमी खुद अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह का खास खुद मिलता है, फिर उसको पता चलता है कि मैं तो जीते जी जहन्नम में जल रहा था, जहन्नम में जल रहा था, अब तो ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। जैसे हजरत वाला का गालिबन एक शेर था, हजरत के से ही हमने सुना, मैं रहता हूँ दिनों रात जन्नत में गोया, मैं रहता हूँ दिनों रात जन्नत में गोया, मेरे बाग दिल में वो गुलकारियां हैं, मेरे बाग दिल में वो गुलकारियां हैं, मैं रहता हूँ जन्नत में गोया दिन रात। यानी क्या मतलब कि अल्लाह से ताल्लुक के बाद मेरी कलबी कैफियत ऐसी होती है, लगता है मैं दुनिया में जीते जी जन्नत में रह रहा हूँ, कि मेरे बाग दिल में वो गुलकारियां हैं। ये कब ताल्लुक पैदा होता है? जब अल्लाह से सही ताल्लुक कायम होता है। तो इसी बात को अगर पाला फरमा रहे हैं कि किस कदर जुल्मत कदरी अंधेरी थी, वहशत वदा थी, परेशान खुद जिंदगी थी उनके बगैर, जब अल्लाह को छोड़ा हुआ था और उनके आते ही बजम रोशन हो गई, बजम महफिल यानी मेरी जिंदगी की महफिल, मेरी जिंदगी की मजलिस, मेरा अंदर का मामला, मेरे दिल दिमाग की कैफियत, मेरे अंदर का मामला, मेरे जाहिर का मामला, मेरे बातिन का मामला, मखलूक का रवैया, और जो मेरे मसले मसाइल थे, मामला थे, वो कुछ और ही रंग से अल्लाह ने शुरू कर दिया। अल्लाह का खास करम हो गया कि उनके आते ही बग्म रोशन हो गई, अल्लाह की महफिल मेरी, जो मेरी महफिल थी, जो उजाड़ महफिल थी, वो पुर रौनक हो गई, पुर रोशन हो गई, सारे मसाइल हल हो गए, खुशियां मिल गई, अब बिना बात के मैं खुश रहता हूँ। बाग दवा सबब नहीं होता, लेकिन आदमी बिला वजह खुश होगा। दूसरी तरफ क्या, सारे अफबाब अय्याशी के राहत के, लेकिन बेचैन बैठा हुआ है, तो फर्क है ना। बस अल्लाह जब खुश रखने पर आते हैं तो अल्लाह माल दौलत के मोहताज नहीं कि बहुत ज्यादा माल देंगे तो अल्लाह खुश रखेंगे। अल्लाह चाहे तो एक किसी को अमरूद बेचने वाले को अल्लाह वो खुशी देंगे, जो बड़े बड़े बादशाहों को भी अल्लाह पाक ना दे अगर चाहे तो खुशी अल्लाह के अख्तियार में। तो और ये खुशी किससे मिलेगी? अल्लाह ताला फरमाते थे जो खुश रहने का तरीका, हजरत फरमाते थे जो खालिक खुशी हो, हजरत फरमाते जो खालिक खुशी है, जिसने खुशी को पैदा किया उसको खुश रखो, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। जो खालिक खुशी को खुश रखेगा वही खुश रहेगा, क्योंकि उसने खालिक खुशी को खुश रखा हुआ। ये और फरमाए कि अक्सर लोग क्या करते हैं, खाली के खुशी की, बड़ा प्यारा जुमला, खाली के खुशी की ना खुशी की राहों में बावजूद खुशियां ढूंढते हैं, जिसकी वजह से और मुसीबत में आ जाते हैं और नाराज हो जाते हैं और उनकी जिंदगी पुरवहशत हो जाती है। खाली के खुशी की ना खुशी की राहों में, जिनसे खाली के खुशी हमारा रब नाराज होगा, उन राहों में अपने लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं, तो होगा क्या उसका फिर रिएक्शन? ये होगा कि उल्टा मामला हमने कर दिया, फिर अब वो डिप्रेशन बढ़ेगा भाई, टेंशन बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेगी, मसले मसाइल होंगे, जिल्लत भी मिलेगी, लोग जलील करेंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे। तो ये चीज है जो हजरत वाला इसमें बयान फरमा रहे हैं।
हम तो सहरा को समझे थे कि मेरा नहीं है वो, हम तो सहराओं को समझे थे कि वीरानी है माँ, जिक्र हक के फैज से वो रश के गुलशन हो गई, उनके मंजिल हमारे पेशवान हो गए।
हम तो समझे थे शहरों को कि वीरानी है माँ, हम लोग ये समझते हैं कि शहरों में वीरानी सन्नाटा होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अगर शहर में कुछ अल्लाह वाले चले जाएं उस वीरानी में भी, लेकिन अल्लाह का जब जिक्र बुलंद करते हैं और वहां पर जब जमा हो जाते हैं कुछ लोग अल्लाह वाले, तो फिर वो जंगल में मंगल हो जाता है, फिर वो जो वीरानी होती है वो शादमानी में तब्दील हो जाती है, फिर वो सन्नाटा जो होता है वो फिर सन्नाटा वीराना नहीं रहता, बल्कि वो जंगल में मंगल हो जाता है, वो जहाँ एक पूरा आबाद हो जाता है। अब इसके दिल में एक बात आ रही है शेर की मजीद तशरीह में कि हमारे प्यारे आका जो जहां नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे हिरा में तशरीफ लेके जाते थे वो सब सन्नाटा था, वीराना था, और कई घंटे लगते हैं आज जो लोग जाते हैं बताते हैं ऊपर चढ़ने में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन वहां पे तशरीफ रखते थे और जाते थे वहां, और सन्नाटा था वीराना था, लेकिन वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद से क़यामत तक और उस दिन से लेके आप ने जो नबूवत का ऐलान किया, वो जो वीराना था, वो जो सन्नाटा था, वो जो सहरा जैसी एक जगह थी, वो जो है वो वीराना नहीं रही। क्या रौनक है उसकी, अब जाके देखिए जो भी हाजी जाते हैं उमरा ज़ायरीन जाते हैं तो सब अक्सरियत जो है गारे हरा पे जाती है, हमारे प्यारे आका तो यहाँ बैठ के अल्लाह की इबादत किए कर उस जगह को देखने जाते हैं। अब कोई सहरा रहा वो वीरानी रही तो अल्लाह की जिक्र की बरकत से वीरानियाँ खत्म हो जाती हैं, बाहर की भी वीरानियां खत्म हो जाती हैं, अपने दिल की भी वीरानियां खत्म हो जाती हैं, सारी वीरानियां मायूसियां नाउमीदियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन भाई वही बात होती है, लेकिन वही बात ये ताल्लुक मानना, ये मजबूत ताल्लुक कैसे हासिल होता है, वही बात होती है कि जो शेख से पहला गहरा ताल्लुक है, तो किसी चीज का जो बिगिनर लेवल होता है एबीसीडी होती है ना जैसे, वो ये होती है पहले शेख से सही ताल्लुक होना चाहिए, मोहब्बत का, अकीदत का, इखलास का, दुनिया परस्ती का, चालाकी का ताल्लुक नहीं होता, नहीं होना चाहिए, नहीं तो अल्लाह की रहमत नहीं होगी, धोखेबाजी की वजह से, मुनाफिकत की वजह से महरूम रहेगा, लेकिन महरूम इस तरह से रहेगा कि थोड़ा बहुत तो महरूम कोई नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते थे खानका का महरूम भी महरूम नहीं रहता, खानका का महरूम भी महरूम नहीं रहता, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, लेकिन मतलब ये कि थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। दिल अपने कल्ब का जो बर्तन है सही करो, उसको सही करो, उल्टा मत रखो, सीधा रखो, गंदा मत रखो, साफ रखो, नियतों को दुरुस्त रखो, अल्लाह के नहीं आओ, अल्लाह के जिक्र के नहीं आओ, शेख तो बाद में आता है, अल्लाह के नहीं शेख से सही ताल्लुक आदमी कायम रखे, क्योंकि मकसूद अल्लाह की बात है ना कि शेख, और शेख जो होता है अल्लाह के रास्ते का रहबर है, तो जो शेख के साथ एक मुखलिस नहीं है तो गोया गोया इसका मतलब ये होता है अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है, तो कैसे उसके मामला आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ठीक है फायदा हो जाएगा उन्हें भी, लेकिन वही बात चालाकी की वजह से, होशियारी की वजह से उसकी तरक्की नहीं होगी ज्यादा, नमाज रोजा कुरान पढ़ भी ले तो उसको कामिल तकवा फिर भी नहीं मिलेगा, कामिल तकवा जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं मिलेगा उसमें, वही बात के दिल सही नहीं है उसका, इसलिए हजरत ताला हमारे प्यारे मुर्शिद शेखुलरत मौलाना शाहकी मोहम्मद अख्तर साहब रहमत इरशाद फरमाते थे पूरी तारीख दबाए औली अल्लाह का इस बात पर इजमा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने अपने शेख से ढीला ढाला ताल्लुक कायम रखा हो, दुनिया परस्ती का चालाकी का ताल्लुक रखा हो, और उसे अल्लाह की विलायत की, अल्लाह की दोस्ती की बहुत अजीम शान कोई बड़ी दौलत मिली हो, फरमाया एक वाकई भी ऐसा नहीं कि ढीला ढाला ताल्लुक था और अल्लाह ने उनको गौस बना दिया, कुतुब बना दिया, दर बना दिया, अरे एक मिसाल ऐसी नहीं है, इतनी अजीब बात है, क्योंकि जितनों को भी ये बड़े बड़े मनसब मिले, जिनको भी ऊंचे मुकाम मिले, जो खुद शेखुल मशाइख बने, कहां से कहां पहुंचे, हौस तक पहुंचे, सारे वही थे अक्सरियत जिन्होंने फनाफिल शेख हुए थे, पहले अल्लाह के लिए सही ताल्लुक कायम किए थे शेख से, उनका ताल्लुक सिर्फ काम निकलवाने की हद तक नहीं था, चालाकी वाला ताल्लुक नहीं था, नहीं तो महरूम रहते होंगे, खाली मुरीदी होते रहते और फिर मुरीदी मर जाते, ठीक है, अल्लाह अपनी रहमत से बख्श भी देता है, क्योंकि ये बड़ा मुबारक सिलसिला होता है, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تقویٰ وغیرہ، کوئی کہہ رہا فجر کی نماز نہیں ہو رہی، کوئی کہہ رہا نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئی کہہ رہا موبائل پہ گندی چیزیں نہیں چھوٹ رہی، اور اصل میں بات یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. تصوف میں تین مرحلے ہوتے ہیں، پہلا کہلاتا ہے فنا فی الشیخ، پھر ہوتا ہے فنا فی الرسول، پھر کہلاتا ہے تیسرا فنا فی اللہ. فنا فی اللہ اس کے بعد پھر ولایت عطا ہوتی ہے، اللہ کی دوستی، صاحب نسبت بنتا ہے انسان، ولی اللہ بنتا ہے. تو پہلے فنا فی الشیخ ہی لوگ نہیں ہے تو فنا فی الرسول کا نمبر ہی کہاں سے آئے گا، اور جب فنا فی الرسول ہی نہیں ہوئے تو فنا فی اللہ کہاں سے ہوں گے. لیکن وہی بات، یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ جو مخلص ہوگا، جو اللہ تک پہنچنا چاہے گا، جو اللہ کے رستے کا عاشق ہوگا، جو اللہ کا قرب چاہے گا، جو اپنی بگڑی بنانا چاہے گا، جو دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہے گا، عافیت چاہے گا، وہی تو کرے گا. وہی یہ رستے، ایسے ہی سچے لوگ یہ رستے طے کرتے ہیں، عام آدمی یہ رستے طے نہیں کر سکتا. حضرت تعالیٰ نے اسی موضوع بہت پیارا شعر فرمایا تھا کہ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے. فرزانے کہتے ہیں دنیا دار چالاک لوگ، اللہ کے رستے پر آئے لیکن تھوڑا سا چل کے بھاگ گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، لوٹ آئے، چلے گئے. لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے. تابہ منزل صرف دیوانے گئے، کہ منزل تک جو پہنچے وہ سچے، جو دیوانے پہنچے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، جو اللہ کے عاشق تھے، جن کو اللہ تک پہنچنا تھا، اللہ کا قرب خاص چاہیے تھا، اس کے بعد پھر کام بنتا ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں رہے، تو کیا کہہ رہا ہے آج انہیں تاریخ کیا کہتی ہے؟ کتاب میں کیا لکھا؟ منافقین تھے. اور جو جنہوں نے جان بھی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اشارے کے اوپر، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں، اور قیامت تک ان جیسے کوئی نہیں ہوا، اور اللہ نے قرآن پاک میں کوئی بول کے بیان کر دیا. تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا اونچے مقام کو کون ہو سکتا ہے مخلوق میں قیامت تک؟ نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہوئے نفاق ختم نہیں ہوا، بھائی کیسے بد قسمت اور کتنی محروم جانے. تو اللہ کے ولی کیا بھیجتے بےچارے، وہ بہت بات کی چیزیں، تو وہ بھی محروم رہے. رسول اللہ ہائی پاور کا چراغ، ہائی پاور کا سورج ہوتے ہوئے بھی منافقین جو تھے وہ سدھر نہ سکے، اب کس کا منہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی محروم قسمت رہے، کیونکہ اللہ کا فضل ساتھ نہیں تھا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اخلاص جب ہو جاتا ہے، شیخ سے دلی تعلق ہو جاتا ہے، اور شیخ کی محبت جس دل میں ہو جاتی ہے، چلو شیخ سے مناسبت نہیں ہو رہی ہو، شیخ سے فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو چھوڑ دو شیخ کو، وہاں چلے جاؤ. مشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ سے دل نہیں مل رہا، مناسبت نہیں ہو رہی، اس کی مجلس میں بیٹھ کے وحشت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، بیان میں مزہ نہیں آ رہا، اور دل سے دل نہیں مل رہا، تو چھوڑ دیں. کیونکہ مقصود شیخ نہیں، اللہ کی ذات ہے، یہ اولی اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں. کیا اخلاص ہے؟ سبحان اللہ. چھوڑ دیں آپ، وہاں چلے جائیں جہاں آپ کو فائدہ ہو. کوئی سچا اللہ والا شیخ ہوگا کبھی نہیں کہے گا آپ میرے پاس آئیں، وہ یہ کہے گا فائدہ ہو رہا ہے تو میرے پاس آئیں، نہیں فائدہ ہو رہا، اللہ نہیں مل رہا، تقوی نہیں نصیب ہو رہا، آپ کوشش بھی کریں، مناسبت نہیں ہو رہی مجھ سے، بھائی آپ پھر آپ چلے جائیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا، وہاں جائیں جہاں آپ کو اللہ ملے. اور سچے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ تو یہ بات کرتے ہیں سب. تو اخلاص ہونا ضروری ہے، مرید کے اندر بھی اور شیخ کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے. شیخ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنی دکان بہانے کے چکر میں رہے اور غلط بات کرے، نہیں تو سب کی پکڑ ہے، چاہے مرید ہو یا شیخ ہو، دونوں پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. پھر تو سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، مرید کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اللہ کی نہیں، شیخ کو، اور شیخ کو بھی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، شیخ کو بھی اخلاص رہنا ہے، تو پھر کام بنتا ہے، تو پھر کام بنتا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو تقویٰ اور یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کا قرب وغیرہ، یہ ساری چیزیں سب بعد میں، شیخ سے تعلق ہی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تو کیسے معاملات ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں بعد میں، تو اصلاح بعد میں کرائیں، پہلے مجلس میں ہی لوگ نہیں آتے صحیح طرح سے. جیسے مثال ایک ہم بولتے رہتے ہیں، بھائی 2:30 بجے کا ٹائم ہے، چلے آپ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں، 15 منٹ لیٹ ہو جائیں، 2:45 تک تو بیان شروع کر رہے ہیں، میں 2:30 بجے کا بیان ہے، میں 3-3 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں، آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، مریدی نہیں جی ان کو بیان شروع کریں. تو جو شیخ کو انتظار کرے، اور شیخ دو دو نئے لوگوں کی بات نہیں، پرانے لوگوں کی بات کرو، ان کو بیعت ہوئے 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، اور ہر بکثرت شیخ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلدی آ جاؤ، چلو شریف ہو رہے دیر سے بھی آ جاؤ، چھٹی بھی کر لو، کوئی حضور تو ہو، لیکن ہیبیچوئل لیٹ کمر. تو جس کو اتنا ادب نہیں ہے شیخ کا، تو بھائی وہ کیا پھر اس کے معاملات آگے بڑھیں گے. और उम्मीद ये होती है क्या शेख कुछ भी बोलता रहे हम तो अपनी चलाएंगे। हाँ कोई परेशानी आ जाए फिर देखें तो आपके कैसे शेख के पास आते हैं और दुआ कर दें किसी वक्त परेशानी डल जाए। और फिर मिसाल के तौर पर कोई तो वो शेख के बारे में बातें मुनासबत नहीं हो रही आप कहीं और चले लेकिन जब किसी किसी का कोई शेख और उसे मुनासबत भी हो जाए और तकवा भी नसीब होने लगे गुनाह छूटने लगे कैफियत बन जाए अल्लाह का कुर्ब मोहब्बत मिलने लगे अमाल जुड़ने लगे शेख की दुआएं उसके अपने कबूल होने लगे अल्लाह चैन सुकून सलामती आफियत देने लगे बड़ी बड़ी मसाइब बल्दियात और अजाब से अल्लाह पाक निकाल दे शेख की दुआओं की बरकत से उसके बाद भी शेख की मोहब्बत नहीं आती उसके बाद भी शेख का अदब नहीं आता उसके बाद भी तमीज नहीं आती तो फिर क्या होता है फिर परेशानियां डबल फिर आती हैं डबल परेशानियां होती क्योंकि बेवफाई की वजह से धोखेबाजी की वजह से मुनाफिकत की वजह से चालाकी की वजह से मतलब परस्ती की वजह से अल्लाह देख रहे होते हैं अल्लाह शेख का भी इखलास देख रहे होते हैं कि ये कितना अपने लोगों के साथ मुखलिस है शेख को भी देख रहे हैं और मुरीदीन को भी देख रहे होते हैं कौन अपने शेख के साथ कितना मुखलिस है। शेख कोई आलमुल गैब नहीं होता लेकिन अल्लाह वालों को अल्लाह पाक ने फिरासत दी हुई है। हदीस शरीफ में हमारे प्यारे आकिद जहां में इरशाद फरमाया बंदा मोमिन की फिरासत से डरो बंदा मोमिन की फिरासत से डरो अल्लाह के नूर से देखता है वो नहीं देखता अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये क्योंकि अल्लाह का रास्ता है तो उसमें आदाब आज बताए जा रहे हैं कि भाई ये तकवा वगैरह फजर में उठना नजरों की बाबत सब बाद में ये चलाकियां मक्कारियां ये जो जहालत है ना ये खत्म करें मुखलिस बनें और ये तकब्बुर अपने खुलूक से निकाला करें ये तकब्बुर की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ते। तो ये कोई शेख जो होता है ये कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर या जीएम या कोई ऑडिटर नहीं होता जैसे या किसी सरकारी अफसर 18 ग्रेड का नहीं होता कि जिसको गए हमने कुछ एक दो गिफ्ट हदिये पेश किए कुछ रिश्वत दिए और काम निकाला और चले गए। बाद लोग शेख को इसी तरह ट्रीट करते हैं भाई अल्लाह के रस्ते का रहम होता है शेख ये इनके साथ इस तरह से मत चलो जिस तरह दुनिया के लोगों के साथ चलते हो नहीं तो अल्लाह की तरफ से परेशानियां बढ़ जाएंगी। और जब बैत भी हो गया हाथ में हाथ दे दिया और अहद बैत का मतलब होता है अहद करना और किससे अहद हो रहा है शेख से नहीं अल्लाह से अल्लाह तेरे वली के हाथ पर मैं बैत हो रहा हूँ मैं ये तुझसे अहद करता हूँ ये करूंगा अल्लाह तो अल्लाह से बातचीत हो रही है अल्लाह से अहद किए जा रहे हैं तो बेमान किए जा रहे हैं हाथ में हाथ दिया जा रहा है शेख से ये कहलाती है बैत। और उसके बाद भी बेलगाम उसके बाद भी आजाद कोई फिकर नहीं कुछ नहीं शेख बाग मशायख होते हैं उनके मिजाज में बहुत लिहाज मरम्मत मोहब्बत होती है तो वो डांट टपट नहीं करते हर एक का मिजाज होता है लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल दुखता रहता है बोलते नहीं हो तो जो दिल दुखना होता है ना गैर इख्तियारी तौर पे मुरीदीन के रवैयों की वजह से मुझे दिल दुखना होता है वो मुरीद के लिए अच्छा नहीं होता। अल्लाह वाले बद्दुआ नहीं देते वो तो दिल दुख भी रहा होगा तो भी याद उड़ा के दुआ करेंगे अल्लाह इसको चैन दे या अल्लाह उसको सुकून दे इसकी परेशानी दूर कर लेकिन बेवफाई के जो निष्ठर लगते हैं ना जख्मों पर अल्लाह वाले भी वो फरिश्ते थोड़ी होते वो भी तो इंसान होते हैं तो होता है क्या है फिर कि उनका जो दिल खराब होना जो होता है वो अच्छा नहीं होता। फिर हजरत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे या तो हाथी बांध से दोस्ती मत करो हाथी बांध से दोस्ती कर ली तो घर का दरवाजा बड़ा रखो ऊंचे साइज का या तो दोस्ती नहीं करनी या दोस्ती कर ली दरवाजा बड़ा करो नहीं तो जब हाथी बांध आएगा तो दरवाजा सब टूट जाएगा। तो मतलब ये बैत हो गया ताल्लुक कायम करिए दिल को कुशादा करो दिल को बड़ा करो नॉट माइंड आदमी बने सही है। और बैत सिर्फ इसलिए नहीं हुआ जाता कि मैं अपने दुनियावी काम और परेशानियां मेरी दूर ये दुनिया कुत्ती बेचती क्या है कुछ भी नहीं है दुनिया। जब आदमी के अंदर इखलास आता है तो अल्लाह पाक सब कुछ खत्म फरमा देते हैं परेशानियां दूर करते हैं अपना कुर्ब दे देते हैं अपनी जात तक दे देते हैं उसके बाद क्या बचा अल्लाह से वालों को कीमती है दुनिया कुत्ती क्या चीज है। जब अल्लाह ने अपना कुर्ब खास दे दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खास किसी को मिल गया तो दुनिया क्या बेचती है उसके आगे दुनिया है मुर्दार दुनिया है फानी। लेकिन हमारी बात सुन भी नहीं आती हम तो फिर नोटों की अक्सर लोग जो है नोटों की भाषा जानते बस दूसरी बात कुछ नहीं जानते तो एक साइसी बातें इस काम से सुनते दूसरे काम से उड़ा देते। तो भाई इखलास पैदा करें मुखलिस बने फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद देखें इखलास बहुत बड़ी चीज है। इस पर एक वाकया याद आ रहा है इखलास के ऊपर बनी इसराइल में कोई एक बहुत दीनदार कोई शख्स था जो हजरत यूसुफ और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर ईमान जो लोग रखते थे वो उस उनके दौर में किसी ने दरख्तों की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्हें बड़ा गुस्सा, सच्चे अल्लाह वाले मौलवी साहब थे, कोई वो अल्लाह वाले तो नहीं थे। तो उन्होंने कहा यार ये दरख्त की पूजा हो रही है और ये शिर्क हो रहा है और मैं दरख्त को काट दूंगा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और इस इरादे से निकले। पहले जमाने में शैतान नजर आ जाया करता था, बीच में शैतान आ गया। उमर मशाइख से हमने बातें सुनाई है। तो वो उसने प्यार से शैतान आया और उसने उनको समझाया कि भाई एक दरख्त है, लगा रहे दो लोग शिर्क कर रहे हैं, उसके तवाफ कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह की तौहीद के खिलाफ शिर्क कर रहे हैं और तू कह रहे हैं मैं होने दूंगा ऐसा, मैं नहीं, मैं तो दरख्त काटूंगा। बहुत समझा नहीं माने। उसके बाद फिर वो गुस्से में आ गया, शैतान को हाथापाई शुरू हो गई। जब वो लड़ने के नहीं आता वो उठा के पटक देते और सीने पे चढ़ जाते हैं। जब बार बार इस तरह होता रहा, शैतान उन पर काबू नहीं कर पाया, तो फिर हुआ क्या, आखिर में शैतान ने एक पैंतरा बदला। शैतान तो शैतान है, कौन उससे जीत सकता है। उसने कहा यार ऐसा करो, मुझसे सौदा कर लो। अब देखो दरख्त अगर तुम काट दोगे उससे तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं है ना, मुझसे डील कर लो। अब तुम ऐसी वापस घर चले जाओ, रोज तुम्हारे सिरहाने जो है एक अशरफी सोने की तुम्हें मिला करेगी। तो बगैर तो गुस्सा किया, लालच दे रहा है तू मुझे, खरीद रहा है। कह रहा नहीं बस सोच लो, थोड़ी देर सोचा। उसने कहा ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। शरारत से आ गया, शैतान का तीर निशाने पे लग गया, लालच से वापस चला गया। मुझे मौलवी साहब थे, अब क्या हुआ कि भाई अब सुबह उठे तो वाकई अशरफी थी, बड़ा खुश हुआ यार, तो बैठे बैठे ही रोने के अशरफी सोने की गिरनी आ गई। उसके बाद क्या, वो दूसरे दिन भी आई और कुछ, तीसरे दिन निशाना बंद हो गई। मैं तो चलो इतफाक से आज छुट्टी होगी शायद शैतान की। एक दो दिन और इंतजार किया तो देखा कि वो और नहीं आई। उन्होंने कहा तीन चार दिन हो गए, उसने तो 2 दिन ही मुझे बस मजे कराए ऐसी की तैसी, मैं आज तो जरा काटूंगा ही काटूंगा। फिर जो कुल्हाड़ी उठाई फिर चल पड़ा, फिर शैतान आ गया। तो हुआ क्या, वो समझाता रहा इसी तरह से। उन्होंने कहा तूने तो मुझे खूब धोखा दिया, 2 दिन अशरफिया तूने भेजी, उसके बाद तूने भेजना छोड़ दिया और शैतान चुप। उसने कहा भाई अशरफिया वगैरह तो नहीं मिलेंगी तुम्हें और तुम गर्भ भी नहीं काटोगे। यहाँ तक कि हाथापाई शुरू करे, हाथापाई शुरू हुई तो अब क्या हुआ, क्या कुछ जैसे लड़ने आते शैतान उठाता और ऐसी पटकी देता कि उनकी हालत पतली हो गई। बहुत कोशिश की हावी होने की, लेकिन शैतान तो शैतान है भाई, तो परेशान कि पहले तो मैं इतना पावरफुल था कि शैतान तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था और मैं उस पर फतह हासिल कर रहा था, आज तो मैं ऐसा हो गया जैसे चिमटी, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो पहले जो है फिर आखिर में मजबूर हो और अपनी हार मान ली। तो फिर खुद ही बेचारे कहते हैं रोते हैं कि भाई शैतान तू ये बता मुझे, उस दिन तो मैं बहुत तेरे ऊपर हावी था, या उस दिन में और आज में इतना फर्क क्यों आ गया। तो शैतान हंसते हुए कहता है उसकी वजह ये कि आज तेरे अंदर इखलास नहीं रहा अल्लाह के लिए। उस वक्त जो तू मुझसे लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अल्लाह की मदद तेरे साथ थी तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन तू मुखलिस था। और आज तू अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा, आज तू दरख्त काटने जा रहा है तो अल्लाह के लिए नहीं काटने जा रहा, आज तेरी जब से मैंने अशरफियां बंद करी हैं तो इस गुस्से में काटने जा रहा है दरख्त, अल्लाह के लिए नहीं काट रहा, इसलिए अल्लाह की मदद हट गई, इसलिए आज तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। भाई इखलास जब बंदे में होता है तो फिर अल्लाह की खास गैबी मदद उसके साथ चलती रहती है, खास गैबी मदद उसके साथ चलती रहती है, अल्लाह का करम उसके ऊपर नाजिल होता रहता है। एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह, हमारे काबिर औली अल्लाह में से गुजरे हैं। इनका एक मुरीद था, मुरीद थे, वो जा रहे थे, बाद लोगों को तमाशा देखने का शौक होता है ना, तमाशे के ऊपर भी एक लतीफा याद आया। तो एक साथ तमाशा देखने का शौक था, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट वगैरह हो गया। उन्होंने कहा यार क्या हुआ आगे, और रश इतना अंदर कैसे जाके देखे मेन जगह पे कि हुआ क्या है। तो एक नारा मारा, हटो हटो ये जो लगी है चोट इसकी, मेरा भाई है मेरा भाई है। तो सबने जगह छोड़ दी, आगे तक पहुंच गए और बिल्कुल पहुंच के देखा तो गला मारा हुआ होता है, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था, वो शर्मिंदा सब पूरा मजमा हंसने लगा। बारह दिन तमाशे की बात थी तो बारह उनको भी तमाशे का शौक था, तो उन्होंने कहा ये रश लगा भाई, ये काफी लोग खड़े हैं, ये क्या रश है। तो ये फ्रंट लाइन पे पहुंच गए। अब हुआ क्या था, वो उस जमाने में हिंदुस्तान का वाक्य है, कोई कोई पंडित टाइप का था, कोई जादूगर हिंदुओं का, तो कई महीनों से कब्र के अंदर उसने अपने आप को सुरंग बना के उसके अंदर बंद कर लिया था, अपने मसामों के जिसमें जिसम के ऊपर मसामे मसामों के ऊपर राख वगैरह लगाते अमल करते हैं लोग, और फिर उसके बाद वो तपस्या वगैरह करते जो भी उनके गंदे मामला होते हैं, उससे हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे जादू के मामला में। कई महीनों के बाद निकला वो कब्र से, तो उसको देखने के लिए बहुत शक्तिमान हो गया, तो सारे हिंदू वगैरह जमा थे वो भी पहुंच गए। और बिल्कुल नंगा टाइप का था, खाली उसकी शर्मगा छुप दी थी, एक लंगोट उसने बांधा हुआ था और बिल्कुल मट्टी का आदमी लग रहा था उस मुंह का, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। तो बिल्कुल जब फ्रंट लाइन पे पहुंचे तो वही बात है, जादूगर था वो, उनकी उस जादूगर की आंखें बंद थी और नीचे देख रहा था वो, नीचे गर्दन झुकी, इसको कुछ महसूस हुआ, किसी मोमिन की खुशबू आई इसको, तो उसने अपना गर्दन उठाई और उनकी तरफ देखा, सामने खड़े रहे। तो जैसी यूं करके नजर डाली वो बराना हो गए, भरत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह के मरीद बराना हो गया। खाली जो एक अंदर नेकर वगैरह जो चड्डा वगैरह पहने थे वो रह गया, सब हंसने लगे उनको, तो एकदम से घबरा कर डर गए कि ये क्या हुआ, ये मैं तो शर्मिंदा हो गया, नंगा कर दिया इसने मुझे, एक खाली नजर डाली। तो अचानक उनके शेख हजरत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह की कानों में आवाज आई, कह क्यों नहीं देता, हसबुनल्लाह व निमल वकील, बस ये उन्होंने कहा, कपड़े वापस आ गए, कपड़े वापस आ गए। अब सारे लोग हैरान, और फिर जो जादूगर था तो उसने कहा, लगता है तेरा गुरु भी बहुत तगड़ा है, लगता है तेरा गुरु भी बहुत तगड़ा है। ये कोई किस्से कहानियों के वाकयात नहीं है, ये सच्चे वाकयात बता रहा हूँ मैं। तो शेख से सही ताल्लुक कायम होता है तो फिर जागते में शेख नजर आता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, बुजुर्गों की करामात होती है, और जो करामात होती है वो अल्लाह के हुक्म से होती है। शेख को बार दफा पता भी नहीं होता, या बार दफा शेख को पता होता है, तसरुफ करता है, शेख की तवज्जोहात होती है, किससे कहानियों की बातें नहीं है। हजरत वाला रहमतुल्लाह को भी लोग देखते थे जागते में, अजीब मामलात में, ये एक अलग मामलात होते हैं, लेकिन ये वही लोगों के साथ ज्यादा होता है, हर एक मुरीद के साथ नहीं होता, जिसने शेख से सही इखलास से कलबी ताल्लुक रखा हुआ होता है, उसके बाद फिर पावर सप्लाई बाहर होती है, उसके बाद रूहानी फैज मिलता है, उसके बाद फिर वो ताल्लुक मामला हासिल होता है, उसके बाद फिर कश्फर करामात शुरू होती है, बहुत कुछ अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, रोजा रसूल सल्लम की ज्यारतें होती हैं, सल्लम की ज्यारतें होती हैं, मुकाशफात के जरिए अल्लाह की ज्यारतें होने लगती हैं, बंदा कहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। पहला स्टेज सही होना चाहिए, आदाब शेर अल्लाह
के गंदे तमाजों से जो अनबन हो गई, रूह मेरी सुन बोलो रेहान सनसन हो गई, नफ्स दुश्मन हो गया मगलूब की याद से, नफ्स दुश्मन हो गया मगलूब की याद से, रूह की ताकत हमारी शेर अफगन हो गई, रूह की ताकत हमारी शेर अफगन हो गई।
नफ्स मग़लूब हो गया उनकी याद से, अब नफ्स ग़ालिब है ना, नफ्स शेर होता है असल में, शेर, और शेर से मुकाबला इतना आसान नहीं है, लेकिन ये नफ्स शेर जो है ये लोमड़ी कब बनेगा, ये गीदड़ कब बनेगा, ये गिलहरी कब बनेगा, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से। ये जो कुरान पाक की तलावत जो रोजाना कराई जाती है, भाई दो रुकू पढ़ने, तीन रुकू पढ़ने, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, तो ये और अल्लाह अल्लाह ये जो जिक्रुल्लाह जिक्र जहरी जो कहा जाता है, ये ज़र्बे लगाना, ये बार बार अल्लाह अल्लाह कहना, ये नफ्स हमारे अंदर, ये नफ्स के ऊपर चोट पड़ती है, नफ्स हमारा हमारे अंदर लगा हुआ है, तो ये शेर जो होगा ये हमारा जो शेर जैसा बना है नफ्स हमारा, लेकिन जब आदमी अल्लाह के जिक्र की तलवार की ज़र्बे लगाता रहता है तो फिर नफ्स हमारा मग़लूब होने लगता है, रब्बी वाला ये फरमा, और फिर उस पर सोने पे सुहागा, फिर तकवा भी हो जाए, तो फिर होता है क्या है कि फिर हमारी रूह जो भी कमजोर गिलहरी टाइप बनी हुई है और नफ्स और शैतान शेर बने हैं। अब इसकी मिसाल क्या है भाई, रूह जब हमारी गिलहरी बनी हुई होगी, लोमड़ी बनी हुई होगी जिक्र से पहले, और नफ्स और शैतान शेर बने हुए, लेकिन जिक्र के बाद उल्टा हो जाता है, रूह हमारी शेर बन जाएगी और नफ्स और शैतान लोमड़ी गिलहरी बन जाएंगे, उल्टा मामला हो जाएगा। और ये कब होगा, अल्लाह के जिक्र से, जिक्र जहरी से, अल्लाह के याद से, अल्लाह के जिक्र से। अब रूह जब शेर अफगन हो गई, यानी रूह हमारी शेर जैसी कब बनेगी, अल्लाह के जिक्र से, रूह की क्या जरूरत है मजबूत होने की, मसला समझने, किसी ताकतवर पहलवान से लड़ने के लिए जिस्मानी ताकत चाहिए, ऐसा ही है ना। कोई रेसलर हो बहुत शानदार ताकतवर, और कोई दुबला पतला कमजोर सा आदमी, अब कोई लड़ ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ताकतवर है। लेकिन नफ्स और शैतान से लड़ने के लिए जिस्मानी ताकत का होना जरूरी नहीं है, रूह का ताकतवर होना जरूरी है, रूह का मजबूत होना जरूरी है। जिस्म चाहे दुबला पतला कमजोर ही क्यों ना हो, तो रूह का ताकतवर होना जरूरी है। क्योंकि गुनाह से बचने में, फजर में उठने में, फजर की नमाज के जो सुस्ती आती है उसको नफ्स को कुचलने में, नजरों की हिफाजत में, तकवे से रहने में, ये सारी चीजों में रूह का ताकतवर होना जरूरी है। और रूह ताकतवर होती है अल्लाह के जिक्र से। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता रहता है तो उसकी रूह ताकतवर हो जाती है और नफ्स को शैतान को कुचल देती है, फाइट होती है बाकायदा नफ्स की और शैतान की होती है ना। जब गुनाह से हम बचते हैं, मुजाहिदे से जो गुजरते हैं, उन्हें पीरियड होता है मुजाहिदे का, ऐ दिल तेरी मानू या खालिक दिल की मानू, ऐ दिल तेरी मानू या खालिक दिल की मानू, दिल के आगे सवाल रखना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कशमकश होती है ना, तो बाद दफा वो गुनाह का तकाजा होता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, कशमकश मुजाहिदा शुरू हो। अब नफ्स और शैतान की और हमारी रूह की एक जंग शुरू हो गई। अगर शेख से ताल्लुक सही होगा, जिक्रुल्लाह पूरा चल रहा होगा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसको फतह अता फरमाएंगे, वो नफ्स को कुचल देगा, रूह से कुचलवा देगा नफ्स और शैतान को। और अगर जिक्रुल्लाह ने भी ना आया, शेख से भी डेरा डाला ताल्लुक है, तो फिर ऐसा उड़ा उड़ा के पटेंगे नफ्स और शैतान, क्या मतलब कि दबा के गुनाह करवाएंगे नफ्स और शैतान, फिर वो कटी पतंग की तरह उड़ता चला जाएगा हवा में। जैसे हवा, जैसे कटी पतंग जब पतंग कट जाती है तो क्या उसकी रफ्तार होती है, बता देती है, इसका उड़ाने वाले से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये पतंग कट चुकी है। तो जब आदमी का ताल्लुक ढीला डाला हो जाता है, शेख से ताल्लुक ढीला डाला होने का मतलब है कुरान पाक से ताल्लुक ढीला डाला, अल्लाह के जिक्र से ताल्लुक ढीला डाला, तकवे से ताल्लुक ढीला डाला, शेख से ताल्लुक मजबूत हुआ, सारे मामलात से जिक्र अस्कार से, तकवे से, सारी चीजों से उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, इंटरलिंक हो जाता है शेख से। ये जो बड़े 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 उलमा कराम मशायख और शेखुल हदीस की सबने अल्लाह वाले क्यों रखे, बड़े बड़े इनका पिंदार जो रखने वाले लोग हैं, और 14 दिन आज से नहीं सदियों से लेके अब तक सबने अपने सरों पे अल्लाह वाले क्यों रखे, क्यों अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम किया। खुद वली कामिल होते हुए, अल्लाह वाला होते ही लोगों ने वलियों से ताल्लुक कायम किया, क्या वजह थी। बानी तबलीग हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, इनके जो शेख थे हजरत खलील अहमद सहारनपुरी थे, ये उनके खलीफा थे और आलिम भी थे। तबलीगी जमात का माशाल्लाह जो मुबारक काम पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ये भी हजरत वाला फरमाते थे ये फैज़े खानकाही तो है कि अल्लाह पाक ने एक ऐसे आलिम का, हजरत वाला फरमाते थे कि ऐसे आलिम का हजरत अल्लाह ने ये क्यों इंतखाब किया कि जिसका ताल्लुक एक खानका से था और वो अल्लाह वालों से बैत किया और उनको खिलाफत मिली। तो ये तबलीग और अल्लाह वालों से ताल्लुक खानका, ये एक ही सिक्के के दो रुख है। शेखुल हदीस फिक्रिया साहब रहमतुल्लाह बैत करते थे, नहीं करते थे, शेख थे नहीं थे, और इनके चचा गया था, फिर ये इनसे बैत हो गए थे शेखुल हदीस। एक ही सिक्के को तो दो रुख है। तो आज जरा और की इतने बड़े बड़े इल्म वाले लोग भी सोबत अहलुल्लाह उन्होंने अख्तियार की, उसके बाद चमके। खाली निरी इल्म होते हुए किताबें पढ़ने से खाली नहीं कोई चमकता, खाली इल्म हासिल करने से नहीं कोई चमकता, तब बुजुर्गों की सोबत में आदमी नहीं जाएगा। बड़े बड़े अनवाफर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह ने बात ये फरमाई, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने ये इरशाद फरमाई, अल्लाह और रसूल कुरान और हदीस में हुक्म दे रहे हैं अल्लाह वालों के पास जाओ, तो कोई बात है ना। लेकिन वही बात कि जिनके अंदर तकब्बुर होता है, बाद साहिब भी जो लोग होते हैं, बाद लोग मदारिस से फारिग हो तहसील भी होते हैं, लेकिन उनकी अना उनको आगे आड़े आती है, वो कहते हैं यार मैं फना फना मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा, मुझे क्या जरूरत है मैं कहीं जाके अपनी इसलाह कराऊं, मुझे बहुत पता है, बहुत इल्म है मुझे हर चीज का पता है। तो बुजुर्गों के पास जाके ये चीजें हासिल नहीं की जाती, खाली इल्म हासिल नहीं किया जाता। मशायख ने मना फरमाए अल्लाह वालों के पास इस नियत से मत जाओ कि खाली मुझे इल्म हासिल होगा, ये नियत भी रखी हुई कि दर्जा फानी में, अजीब बात बता रहा हूँ। मशायख फरमाते अल्लाह वाले कैफियात एहसानी के हुसूल के लिए जाओ, ताल्लुक मालने के हुसूल के लिए जाओ, अल्लाह के कुर्ब के लिए जाओ, तकवे के हुसूल के लिए जाओ, फिर वैसे ही हासिल हो जाएगा तुम। फिर तो किताबें पढ़ पढ़ के भी हासिल हो रहा है लोगों को, लेकिन बामल बने कितने लोग हैं कि जो माशाल्लाह बड़े बड़े इल्म वाले लोग भी हैं, बदनगरी नहीं छोड़ रहा है, हराम कारी नहीं छोड़ रहा, छोड़ रहा है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, क्या इल्म नहीं है, इल्म माशाल्लाह बहुत है। तो इल्म से क्या होता है खाली, जब तक अमल ना हो, आलिम बेअमल जहन्नम में जाएंगे, रसूल अल्लाह से इरशाद फरमा रहे हैं। हदीस शरीफ सुनते रहते ना, आलिम बेअमल जहन्नम में जाएंगे। ये मोते हुए तुमसे अमल नहीं हो सका, जाओ जहन्नम में। आलिम का मतलब ये नहीं होता जो मदरसे से पढ़े आलिम मुफ्ती होते हैं कुरान हाफिज़ का, ये मतलब है। आलिम का मतलब सब आ गए, जो भी इल्म रखता है, जिसको पता है शरीयत का, ये मुराद है। उसको इल्म है तो अल्लाह वाले के पास जाने से सबसे बड़ा फायदा, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी इरशाद फरमाते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान को जो इल्म होता है उस पर अमल हो जाता है। बस मकसद हासिल हो गया, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई, सारी जिंदगी इसी में तो गुजर जाती है। इल्म तो बहुत होता है लेकिन अमल नहीं होता। एक छोटी सी बात है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, फजर में उठना चाहिए ना भाई, सबको पता है। तो चोरों पर अमल करके दिखा दो, अमल में देखेंगे तो 150 होती है एक साथ फजर में। इल्म से क्या होता है, इसलिए थानी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जब तक जो मालूमात है, जब तक मामूलात का हिस्सा नहीं बनेगी, काम नहीं बनेगा। क्या अल्फाज हैं, जब जो जितनी भी मालूमात है, जब तक वो मामूलात का हिस्सा नहीं बनेगी, काम नहीं बनेगा। लोग इसी में पड़े हैं, वो मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, बहुत इल्म है मुझे, आप क्या बता रहे हैं मुझे। आजकल तो चूंकि यूट्यूब और नेट वगैरह पे इतनी ज्यादा हदीस मुबारक आती है और इतनी दीनी चीजी चीजें आती रहती है, लोग पढ़ पढ़ के खुद को अल्लामा समझ रहे हैं। अब उलमा और मशायख थे और उलमा कराम के फतवों पर एतराज करते हैं और खुद जाहिल होते हैं। शर्म आनी चाहिए, तुमने दो दो चार किताबों से दो हदीसें पढ़ के और यूट्यूब से दो चार दीनी लिटरेचर हासिल करके खुद को अल्लामा समझ के जो है लोग उलमा के ऊपर और बड़े बड़े जहीद उलमा पर एतराज़ करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, उनकी तनकीद करते हैं और उनके आगे अपना फतवा देते हैं। अगर फरमाते थे ऐसे मुफ्ती बहुत मिलेंगे। उलमा वारिसुल अंबिया है, आप इस्लाम फरमा रहे हैं, हदीस शरीफ है, जो उलमा कराम है वो वारिसीन अंबिया है, अंबिया कराम के वारिसीन है। उनसे अदब करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और उनके अगर कोई आपस में कोई मसाइल है, अगर शरी मसाइल में कुछ उलमा का बाद में इख्तलाफ होता है तो उनको उस हद तक रखा जाए, वो उन बड़ों का मामला है, वो उनके बड़ों का मामला है, तो उसमें आदमी जानिबदार ना बने, गैर जानिबदार है, बड़ों की बातें हों हमें नहीं पता। 99% तो किसी उलमा कराम का, किसी मुफ्ती साहब का इख्तलाफ ही नहीं है किसी चीज़ में, उस तरह हो ना भाई। 1-2% में बाग उलमा कराम में इख्तलाफ है तो उसी के पीछे लगे हुए 1-2% वाली चीज में, जो 99% चीजें क्लियर है, जो अल्लाह पूछेगा उसकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आना नहीं है ना दीन पे। इसलिए वो ताने देने, तनकीस करनी है, मौका चाहिए ना कीचड़ उछालने का, गंद उछालने का। मौलवी यू मौलवी यू मर जाएंगे ना, लाशा रखा होगा यही मौलवी आके नमाज वगैरह पढ़ाएगा, उसके आगे रखे होंगे हम और वही दुआ कर रहे होगा मौलवी। आज बड़े हकारत से गए मौलवी मौलवी तो यू मौलवी तो यू। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है लिबरल लोगों में, जहाँ बैठेंगे फैशन बन चुका है। उलमा कराम की बदजनी दिल में रखी है, रोक रखा हुआ है, एतराजात रखे हुए। अरे अपने आप को देखो, मौलवी अपनी कब्र में खुद जवाब देगा, तुम क्यों वकील बनते हो मौलवी को, अगर कोई गलत होगा वो खुद भुगतेगा। हमें तो अपना इबला दुरुस्त करना है, हमें अपनी उल्टी कब्र को सीधी करना है, लेकिन उलमा कराम से गोंग रख लेना बात। ये बहुत ज्यादा ये मर्ज फैलता जा रहा है, इसलिए सब दिल में बात आ रही है। तो खात्मा कुफर के होने का अंदेशा है। रसूल अल्लाह उसमें इरशाद फरमा रहे हैं, जो मेरे किसी वली से गोंग रखता है उसका मेरे खिलाफ ऐलान जंग है। अल्लाह जिसके खिलाफ ऐलान जंग कर दें उसकी तबाही यकीनी। उलमा कराम फरमाते हैं, जिस तरह सूद के बारे में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग सूदी मामलात में रहते हैं तो मेरा अल्लाह और रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। और तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ऐलान जंग का मतलब ये होता है कि बंदा मोमिन की सबसे प्यारी चीज ईमान होता है, मौत के वक्त अल्लाह नजा के वक्त उसका ईमान सल्ब कर लेते हैं। ये कहलाता है अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग, दुश्मन को बर्बाद करना होता है ऐलान जंग में। और अगर किसी का खात्मा ईमान पर हो गया, इसका मतलब है नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह पर हार गए, अल्लाह तो ऐलान जंग कर रहे थे और वो तो बच के जन्नत में चलेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो एहतियात किस में, एहतियात ये है कि गुनाह अगर किसी को नहीं आना दीन के ऊपर, भाई गुनाहगार मर जाओ, लेकिन ऐसे अल्फाज ऐसी बातें मत करो जिससे ईमान का पट्टा गर्दन से उतर जाए, गुनाहगार मर जाओ। हजरत वाला फरमाते अगर पक्का सोचा हुआ तुम्हें तकवे पे नहीं आना, दीन पे नहीं आना, अरे तो हिदायत के जराए होते ठीक है, अच्छे बुरे तो सब जगह होते, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। हक और बातिल दो उलमा होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, अल्लाह ने हर चीज की जिद बनाई है। जब रात बनाई है तो सुबह भी बनाई है, अंधेरा बनाया तो रोशनी भी बनाई है, नूर बनाया तो जुलमत भी बनाई है, मर्द बनाया तो औरत भी बनाई है, जवान है तो बूढ़ा भी, हर चीज की जिद बनाई है। तो सारी चीजों में जिद चल रही है, तो अल्लाह वालों में भी तो दो नंबर एक नंबर है, एक नंबर पीर भी है अल्लाह वाले, दो नंबर भी पीर बने हुए बैठे हैं जो औरतों को सामने बैठाते, ताबीज बंदों की कहानी चल रही है, हराम कारियां कर रहे हैं, माजूने खाते रहते हैं, औरतों से बदकारियां करते रहते हैं, पीर साहब बने हुए बूढ़े बूढ़े कम्बख्त, इस लाइन को भी बदनाम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो तो सारे लोग सारे अल्लाह के वली ऐसे हो गए, सारे पीर ऐसे हो गए। भाई हर चीज की अल्लाह ने जिद बनाई, अच्छा है तो बुरा है, काला है तो गोरा है, इसी तरह एक नंबर उलमा है तो दो नंबर भी है, उसमें अश्काल क्या है, परेशानी वाली क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कोई जबान को चुप रखो, छोड़ दो उनको, तुम जो तुम्हारी समझ में आ रहा है सच्चे उलमा नजर आ रहा है उनके पास चले जाओ। आपने वो शाख ही काट दी इसको, उल्लू बैठे आपकी नजर में कोई है ही नहीं, सारे ऐसे ही है कंडम नाकाबले रेफरेंडम। हजरत वाला फरमाते थे कि बाज लोग उलमा को समझते हैं मशाइख को कि ये बिल्कुल कंडम है नाकाबले रेफरेंडम है, और आखिर फरमाते अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है यार, सोच की गंदगी है, ये सोच की गंदगी है, हर चीज की जिद अल्लाह ने बनाई। तो आप जबान को आदमी खामोश रखे, अदब ये है कि आप छोड़ दें उन लोगों को जो आपको सही लगे, आप उनके साथ जुड़ जाए। अब इससे ज्यादा क्या अदब का मामला होगा, इससे ज्यादा क्या तमीज सिखाएंगे, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है, कोई इस फैशन से इस चीज से बचना चाहिए। हाँ, जब तक किसी आलिम का कुफर वावे ना हो जाए, वावे ना हो जाए, और जिसकी बाज उलमा कराम तस्दीक भी कर दें, जैसे कोई खिलाफ शरीयत कोई बातें करना शुरू कर दे, कोई भी पागल हो सकता है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, है ना, मिंबर रसूल में बैठ के बाज लोग दो नंबर लोग अल्लाह रसूल और कुरान हदीस के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं बाज लोग आजकल, है ना, इसी तरह बाज लोग मिंबर रसूल में बैठ के गुस्ताखी रसूल भी कर रहे हैं, आप सल्लम की गुस्ताखियां कर रहे हैं, है ना, और बड़े लतीफ तरान में होशियारी मक्कारी के साथ, है ना, और जिस पर उलमा कराम में इस्तराब भी पाए गए और उलमा कराम ने उनको फिर कुफर के पत्ते भी लगा दिए, और बिल्कुल अगर कोई गुस्ताखे रसूल है उलमा कराम अगर कुछ उनको बोले भी नहीं और कुफर के पत्ते भी ना लगाए तो भी ऐसे लोगों से दूर रहे, उनका कुफर बागे हो चुका है। किसी गुस्ताखे रसूल के नियम उलमा कराम के फैसलों के मोहताज नहीं है, तो उलमा कराम की क्या राय, अरे कोई तुम्हारी माँ को गाली देगा अल्लाह ना करे तो तुम ये कहोगे यार उलमा कराम क्या कहना है इस बारे में, मैं फतवा लूंगा अल्लाह हल बल आपको, ये भी कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में उलमा कराम से रुजू करना पड़े। एक आदमी बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहा है और आप कह रहे हैं ये तो उलमा कराम से पूछूंगा, वो तो ये कह रहे हैं अरे उलमा कराम को छोड़ो तुम्हारे कान नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें दिल दिमाग नहीं दिया। हाँ, जिसको कुफर बाजी हो जाए फिर ठीक है, आप लोगों को बचाने के लिए बोलो भाई इससे दूर रहो तो समझ में आता है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है जिसको कुफर वाजे नहीं है, नहीं तो कुरान पे हाथ रख के बोलो जिस आलिम की तुम बुराई करते हो कि वो जहन्नमी है और वो काफिर है या जो भी बुराई है, तो मुखलिफात जो तुम जो उसके बारे में तुम रखते हो बातें दिल में वो बिल्कुल सही है, नहीं तो हजरत वाला फरमाते थे बदगुमानी रख रहे हो तो फिर दलील लो हलफ उठाओ, हलफ उठाओगे यकीनी ऐसी बात है, तुम्हें पता है कि दीवार के पीछे क्या है, बाज दफा तो आंखों को देखा हुआ भी गलत होता है, तो एहतियात किस में, हजरत फरमाते थे बिला वजह वो बदगुमानी रख के अपनी गर्दन मुकदमे में क्यों फंसा रहे हो, कयामत वाले दिन अल्लाह मुकदमा चलाएंगे, तुमने फला के बारे में बदगुमानी रखी थी जरा उसकी दलील पेश करो, दलील होगी नहीं, दलील होगी नहीं, अब फंसोगे मरोगे, तो फरमाया क्यों अपनी जान को फंसाते हो, अच्छा गुमान रखो और अपनी जान छुड़ाओ, अच्छा गुमान रखो और अपनी जान छुड़ा लो बचा लो। तो आज करेंगे कुछ नहीं, तनकीद चल रही है, तनकीद पे तनकीद, तनकीद बराए तनकीद, जगह सबके हेड लगे हुए उलमा के, अल्लाह पूछेंगे हाँ भाई क्या करूँ, मौलवी को जाने को आप बहुत बुराइयां कर रहे थे, आप बिल्कुल सही कहते थे, आप परमिशन देंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, आप कहेंगे तो हम जन्नत में भेज देंगे, नाउज़ुबिल्लाह ऐसे हेड बने हैं। अरे भाई अपनी तो कवर सीधी कर लो, तुम क्या कर रहे हो सुबह से रात तक, क्या तुम्हें ऐसे लोगों को अच्छे वो लोग नजर नहीं आए जो मर गए अल्लाह के पीछे, वो आलिम भी तो थे, वो भी तो साइलेंट लोग थे जो मरते हुए आ रहे हैं 1400 साल से अब तक और क़यामत तक मरते रहेंगे, तुम्हें वो मौलवी नजर नहीं आए, तुम्हारी आंख जो है वो गंदगी क्यों देखती है, गलाबती क्यों देखती है, सलादी क्यों देखती है, उस गंदी सादी जो आम मक्खी तुम क्यों बने हो, जो पूरा साफ जिस्म छोड़ के जख्म और गिलाजत तरकीब पे बैठती है, तुम शहद की मक्खी क्यों नहीं बनते कि तुम लोग गंद को छोड़ के फूलों और खुशबुओं के ऊपर बैठती है, तुम गंदगी क्यों तलाश करते हो, तुम्हें अच्छाइयां किसी में नजर नहीं आती, तो भाई सोचना है हमें शहद की मक्खी बनना है या गंदी मक्खी बनना है, जैसे लोगों की तलाश घूमते रहे। सच अगर कोई खुदा की कसम अगर कोई इस नियत के साथ कि सच्चे अल्लाह वाले जो कुतुब अब्दाल हौस के मुकाम पर पहुंचे अगर वो उसके पास भी जाएगा इस नियत के साथ मैं इसके ऐब तलाश करूं तो खुदा की कसम शायद उसको भी कोई ऐब मिल जाए अल्लाह के वली का, क्योंकि जो जात जो मासूम जात सिर्फ अंबिया कराम की होती है, जिसका जो मतलाशी होता है जो बंदा जिस चीज का उसको वो चीज मिलती है, तो ऐब देखने की नियत से जाएगा हो सकता है उसके ऐब मिल जाए, क्योंकि बशरी तकाजे अल्लाह वालों के साथ भी होते हैं, तकवे के बावजूद हो सकता है वो ऊंच नीच हो उनमें, तो फरिश्ते थोड़ी हैं वो, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो कहाँ जाओगे, फिर तो तुम इस काबिल नहीं रहे, तुम्हें तो सब में सब पलीत नजर आएंगे, और इसके पीछे इन सारी चीजों के पीछे तकबर छुपा हुआ होता है। जब इंसान अपने आप को बहुत पारसा समझता है तो उसे सब गंदे नजर आते हैं, हर एक में ऐब निकालेगा, हर एक में तनकीद नजर आएगी, कोई ना कोई ऐब निकाल देगा। हमारे एक पीर भाई फरमाते थे हजरत से इस मौजू के ऊपर, बाप लोग ऐब नजर नहीं आता, कीड़े नजर नहीं आते, जाते तो कीड़े निकालना आदत होती है, देखते हैं मैंने बहुत कोशिश की जहां तो कोई कीड़ा निकल नहीं रहा, नजर नहीं आया मुझे, क्या करें? तो है ना फिर जेब में लेकर आते हैं बाहर से और फिर डाल देते हैं। बाप लोगों की जबल्लत ही ऐसी होती है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। और जो शेख जो होता है ना, उसकी नजर एक तलवार की मानिंद होती है भाई, हदीस शरीफ, बंदा मोमिन की फरामत सड़क अल्लाह के नूर से देखता है। शेख दिली दिल में हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, बाप अल्लाह वाले होते हैं, उनको अल्लाह ने ऐसी करामत दी हुई होती है कि अपने जो मुहिदीन मुतालिकीन होते हैं लाखों ऊपर से मीठे मीठे बने रहे, यूं बने रहे, लेकिन उनके कल्ब की जो जुलमत होती है, शेख को तकलीफ हो रही होती है लहरों की शक्ल में, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से अंदर का हाल टपक रहा होता है शेख के दिल पर, उनके दिल से ताल्लुक है, शेख से रब्ता है, जैसे भी है, तो शेख को घबराहट होती है, दहशत होती है, दिल अजीब सा रहता है शेख का, उनके अंदर की गंदगी की वजह से, बुख्स की ना हसद की वजह से इसलाह नहीं कराते। ये मामूली बात नहीं बता रहा मैं, ये तो दिल को साफ करें, दिल को साफ करें, तो फिर शेख की भी मोहब्बत दिल में उनके आएगी, शेख भी मोहब्बत करेगा दिल से, बहुत तवज्जो देगा शेख, शेख को भी मोहब्बत, मजबूर मोहब्बत कर दिया जाता है, शेख को भी मजबूर मोहब्बत कर दिया जाता है कि अपने इस मुरीद से तुम मोहब्बत करो। जैसे अगर हमारे प्यारे आफत हो जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सबने जो अपने मशायख से ये हदीस शरीफ सुनी, नकल हदीस अल्लाह कभी क्यों रहे, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह पाक ने खास तौर पे दो हस्तियों से शदीद मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। एक तो आप सबने सहाबा से सभी मोहब्बत करते थे, लेकिन दो शख्सियतें ऐसी थी जिनके बारे में आप सबने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ने खास हुक्म दिया है कि आप इनसे शदीद बहुत मोहब्बत करें। फरमाया एक अली से और एक हजरत उबर, एक हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला से, हजरत अली रजी अल्लाह तआला से और हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला से। बताइए आप, मामूली बात है, तो कोई उनकी बात थी ना उनमें, खास तौर पे हुक्म दी अलग से दिया जा रहा है, वैसी मोहब्बत करते थे आपसे हजरत अली करम अल्लाह जैसे, और चचावाद भाई भी, और हदीस में कितने उनकी माशाल्लाह फजाइल बयान फरमाए, उसके बावजूद अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, तो कोई बात होगी ना उनमें।
तलख थी बज़्मे जहां में अहले दुनिया की हया, तलख थी बज़्मे जहां में अहले दुनिया की हया, फैज़ बज़्मे आशिक़ां से बज़्मे गुलशन हो गई।
दुनिया पर फासिक फाजिर जो गुनाहगार लोग थे, फरमाते उनकी जिंदगी तल्ख थी अल्लाह वालों से ताल्लुक के पीछे, बड़ी बड़ी मुसीबतें थी, बलाएं थी, बीमारियां थे, किसी पे जादू था, किसी पे कुछ था, तो बस खुदकुशी, बाज लोग खुदकुशियों के मनसूबे बना रहे थे, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, को सच्चा अल्लाह वाला मिल गया, तो फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, चैन सुकून आ गया, उनकी बल्लियात मुसीबतें परेशानियां खत्म हो गई, सारे उनके मसाइल हल हो गए, और अल्लाह ने उनको दुनियावी भी चैन सुकून दिया और उकूनी भी चैन सुकून दिया तकवे की बरकत से। तो ये कब हुआ ऐसा? जब कोई अल्लाह वाला बज़्मे गुरोहे आशिफा में जब शामिल हुए, यानी किसी अल्लाह वाले के पास जमाने लगे, जब अल्लाह वालों के, जब अल्लाह के जो आशिकी ने जब उनकी सुबह अख्तियार की, तो फिर उसके बाद सारे रंजो अलम, सारे परेशानियाँ दूर हो गई।
दुनिया की हया हो गई, रूह की ताकत हमारी शेर अफ़ज़ल हो गई, तलख थी बज़्मे जहां में अहले दुनिया की हया, तलख थी बज़्मे जहां में अहले दुनिया की हया, فیض بزم عاشقاں سے فیض گلشن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سن بولو ریحان سوسن ہو گئی، مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی،
مت لگانا دل حسینوں سے ایک دن خاک منقش مدفن ہو گئی، یعنی حسینوں سے دل مت لگاؤ، خاک منقش یعنی نقش و نگار، یعنی حسین و جمیل لڑکیاں عورتیں جو تمہیں بہت ابھی اچھی لگ رہی ہیں، تو یہ سب ایک وقت آئے گا کہ سب ان کو دفن کر کے آئیں گے، ان کا بھی آخری انجام خبر ہی ہے، تو اس سے دل لگاؤ جس کو جو حی القیوم ہے، جو جس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے،
اختر روکش یار بیگانا ہوا، جب سے اختر روکش یار بیگانا ہوا، بزم اہل دل اس کے قتل حسن ہو گئی، بزم اہل دل اس کے قتل حسن ہو گئی،
جب سے اختر پہلے دنیا سے روکش ہوا، یعنی حضرت والا یہ فرما رہے ہیں کہ جب سے اختر نے دنیا کی فالتو چیزوں کو چھوڑا اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کیا، روکش کی چھوڑ دینا، ترک کر دینا فالتو چیزوں کو، لایانی چیزوں کو، اور اللہ کو جب مضبوط پکڑ لیا تو پھر اختر کی جو عزت محبت اہل دل کی نظر میں اور زیادہ بڑھ گئی اور قیمت بڑھ گئی، یعنی جب آدمی تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اور صحیح تعلق قائم کرتا ہے بالفرض، اگر کوئی کسی دوسرے اللہ والے کے پاس بھی اگر جائے گا یا اپنے شیخ کے پاس بھی جائے گا تو شیخ بھی دل سے محبت کرے گا، خاص توجہ ڈالے گا، کیونکہ شیخ سچا ہوگا تو باغ طبع کشف ہو جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، جیسے ایک نوجوان تھے 24-25 سال کے، کسی والدین نے زبردستی مجبوری میں ان کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا تھا کوئی ایجوکیشن سسٹم میں، اب وہ نہیں پڑھنا چاہتے لیکن ماں باپ کی ضد تھی اور کافی ان پہ سختی بھی کری، مجبور تھے، باہر ایڈمیشن تو لے لیا تھا لیکن وہاں بہت تقوی سے رہنے کا اہتمام کرتے تھے، وہ نوجوان عمر کیا تھی 24-25 سال، اب اس کی تھوڑا سا تشریح بتاؤں، ایک بار وہ حضرت کے پاس تھے، ہم لوگ بھی تھے، تو وہ حضرت نے بہت محبت سے ان سے بات چیت کری اور پھر سب کو گواہ بنا کے حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ سب گواہ رہنا، یہ میرا خاص ہے، یہ میرا خاص ہے، یہ میرا خاص ہے، تین دفعہ حضرت نے فرمایا، تو بہت بڑی بات تھی، ورنہ حضرت کا تو بہت اونچا مقام تھا، حضرت ہر ایک کے لیے بات نہیں کہتے تھے، بہت کم لوگوں کے لیے حضرت نے بات فرمائی، تو ایک مرید تھے اور حضرت سے بہت پرانے مرید تھے، بیت تھے، تو بعض دفعہ ایک دکھ ہوتا ہے دل میں کہ یار حضرت تو آپ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں لیکن حضرت نے ہمیں کبھی نہیں کہا، ہوتا ہے انسان ہے وہ ایسی بات نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو سب سے ہی محبت فرماتے ہیں، آپ کی جو ساری خاص ہے، میں نہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ میرا خاص ہے، آپ تو سب چپ کیا بولیں، تو پھر مجھے جستجو لگ گئی، میں نے کہا تحقیق کرو بھائی اس نوجوان میں کیا ایسی چیز ہے جو حضرت نے ایسی بات کی، ضرور کچھ راہ رہی ہے، میں نے تحقیق کری تو پتا یہی چلا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہاں اور اس لڑکے کا تقوی کا یہ حال ہے کہ لڑکیاں شرط لگاتی ہیں اور 3 سال ہو گئے اس کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے کہ تم اس سے دوستی کرنا تو ایک طرف، बातचीत करना तो एक तरफ, अगर तुम्हें ये देख ले तो बात करना। तो कह रहा तीन साल हो गए लड़कियां हारती भी आ रही दूसरे से ना, वो नौजवान बात करना तो एक तरफ, देखना तो एक तरफ, नगर उठा के किसी की तरफ नहीं देखता, अपने काम से काम पढ़ाई और फिर लड़कों का चंद गुरु को उनके साथ। अब ये बात कोई आके बताता नहीं है शेख को, हजरत में ऐसे जबरदस्त आजकल मार के अंजाम दे रही, लेकिन वही बात शेख की नजर होती है, शेख की नजर होती है, पता चल जाता है अल्लाह के फौज के बाप जब अल्लाह कश करा देते हैं जब चाहते हैं, तो होता क्या है कि वो हजरत को पता चल गया कि ये इस नौजवानी में माशाल्लाह ऐसा शानदार, इसलिए हजरत आला फरमाते थे मेरा खास वो है जो तकवे से रहेगा, जो जिस दर्जे का मुत्तकी होगा वही मेरा खास है, बस ये है। और फरमाते थे हजरत कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, और अख्तर ये है उसी का जो है आपका, अख्तर है उसी का जो है आपका, और अल्लाह जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। क्या बात बची,
नफ्स के गंदे तफाजों से जान गुम हो गई, रोह मेरे सुन गो रेहान सोसन हो गई, जब हमारे आबगे में दर्द दिल शामिल हुआ, उनके हर मंजिल हमारे पेश दामन हो गई, रूप मेरे सुन लो रेहान सोसन हो गई।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رب الرحيم يا الله جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی ہو یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما یا رب کریم یا رب الرحمین ہم سب کو فنا فی الشیخ کر دے فنا فی الرسول کر دے فنا فی اللہ کر دے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دے ہم سب کو اللہ والا بنا دے کہ اللہ ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرما ہماری اخروی پریشانیوں کو بھی دور فرما ہماری دنیا بھی شاندار کر دے اور ہماری آخرت بھی اس سے زیادہ شاندار کر دے یا اللہ عافیت دارین ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور امت مسلمہ کو عطا فرما یا رحم الرحمین حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے جو بھی آئے محروم نہ جائے دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اہلیہ محسن صاحب کی اہلیہ بہت بیمار ہیں ان کے دل کا بھی عارضہ ہوا ہے اور ان کے گردے بھی کام نہیں کر رہے دعا کریں اللہ پاک ان کو تمام امراض سے شفا دے دے گردے کی پتھری سے نجات دے دے ان کا کریٹینائن لیول کو نارمل کر کے کم کر دے یا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے مرض کا نام و نشان بتا دے ایک خاتون نے ان کی ہڈی اور جوڑوں میں شدید تکلیف ہے اور انہیں بستر پکڑ لیا ہے اور ان سے بالکل اٹھا بھی نہیں جا رہا اور 28 سال کی عمر ہے ان کی اللہ دعا کرے اللہ پاک ان کو بالکل شفا کلی نصیب فرما ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ یہودیوں کو اور اس کے مددگاروں کو جلد از جلد تباہ برباد کر دے سب ہفتی سے مٹا دے پھر کا نشان بنا دے یا اللہ ہم لوگوں کو یہودی پروڈکٹ کا 100% بائیکاٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی کل مومنین مومنات کی کل جنات کی اور میرے ساس سر کی سب کی کامل مغفرت فرما سب کی قبروں کو نور سے بھر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم محمد وعلى اله وصحبه وسلم
Thank you.